नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से नए नियम की पुस्तक के कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हमारा शरीर एक डेरा है, हमारा शरीर एक बर्तन है जो नाश्वर है और हम उसे छोड़ करके इस संसार से कूच करेंगे। जो हमारा आत्मिक रूप है, जो मृतक में से जी उठेगा, वह परमेश्वर के घर में होगा। जी हाँ, इस अध्ययन को हम देख रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपकी निकटता में आकर आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं, सुनते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभकारी हो सके, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायक हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार की ऐसी समस्या में उलझे हुए हैं। पिताजी, आप उन सब की भी सहायता करें, ताकि वे भी इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। हाँ प्रभु, आप उनके मार्गदर्शक हो, आप उनके सहायक हो। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद को निकाल लीजिए। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। जी हाँ, मैं इस शरीर में कराहता हूँ, कराहने की अपेक्षा कोई कर भी क्या सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र ने कुछ वर्ष पूर्व अपने गैरेज के ऊपर में एक घर बना लिया, ताकि वह अपने अध्ययन के कार्य को वहां पर कर सके। और जब कभी वह सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर की ओर जाता, उसे थकावट महसूस होती। वह समझ गया कि वह अब बूढ़ा हो रहा है। पहले तो वह उछलता हुआ सीढ़ियां उतरता था, परंतु वह अब प्रत्येक कदम कराहता हुआ उतरता है। उसकी पत्नी कहती है कि कराहना धर्मशास्त्र पर आधारित है। जी हाँ, पौलुस कहता है कि इस घर में हम कराहते हैं, और जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं भी और आप भी कराहते हैं, अर्थात कराहता ही रहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। यह बड़ी रोचक बात है। एक दिन यीशु अपने को इस संसार में से ले जाएगा और हम अपने प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे और फिर उसके सामने खड़े होंगे। यह हमारे लिए कैसा अद्भुत अनुभव होगा। हम उसकी धार्मिकता को धारण करेंगे, हम नंगे नहीं हो जाएंगे, परंतु हम उसके साथ होंगे। मृत्युत्थान पर सब उसकी धार्मिकता धारण किए हुए नहीं होंगे। रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस कहता है, वह अर्थात मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यह हमारी धार्मिकता है, परंतु कुछ लोगों ने उसकी धार्मिकता स्वीकार नहीं की है। उन्होंने मसीह को त्याग दिया है, अतः धर्मी और अधर्मी दोनों का मृत्युत्थान होगा। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस कहता है, धर्मी अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। यीशु ने तो पहले ही कह दिया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 29 पद में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे मित्रों, एक दिन आप उसके समक्ष खड़े होंगे। उस दिन क्या आप मसीह की धार्मिकता धारण किए हुए होंगे? क्या आप उसके द्वारा स्वीकार किए जाएंगे? मेरे मित्रों, यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि बाइबल एक ही न्याय का दिन नहीं कहती है। न्याय के दिन अनेक हैं। पहला, मसीह द्वारा क्रूस की मृत्यु भी न्याय का एक दिन था। यीशु ने हमारा दंड उठाया, इसलिए वह कह पाया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दूसरा है, अपना न्याय का दिन। पहला क्रंथियों की पत्री 11:31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और तीसरा है, विश्वासी को परमेश्वर की ताड़ना का दिन। और इब्रानियों की पत्री 12:6 में देखते हैं, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। चौथा है, विश्वासी के काम का न्याय, जैसा हम इसी अध्याय में आगे देखेंगे। पांचवा, इसराइल का न्याय। छठवां, अन्य जातियों का न्याय। सातवां, पतित स्वर्गदूतों का न्याय। आठवां, श्वेत सिंहासन के समक्ष न्याय। सब उद्धार रहित मनुष्यों का न्याय। वे मसीह की धार्मिकता से वंचित नंगे खड़े होंगे। उनका न्याय उनके कामों के आधार पर होगा। वे यही चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5:4 में लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरण हार है जीवन में डूब जाए। यदि आपको कराहना है तो कराहते रहें। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र पर आधारित है। हम बोझ से दबे हैं, इसलिए इस देह में कराहते हैं। हमें नंगेपन की चिंता नहीं, क्योंकि हम मसीह की धार्मिकता में आवृत हैं। वही हमारा उद्धारकर्ता एवं आशा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:5 में लिखा हुआ है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आत्मा के बयाने का अर्थ है अभी और भी आना है। उसने हमारी इस दुर्बल देह में, हमारे इस क्षणभंगुर देह में पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा केवल बयाना है। मसीह ने हमें मोल लिया है, जिसका बयाना पवित्र आत्मा है। एक दिन हम इस दुर्बल देह से निकलकर हवा में मसीह के साथ होंगे। यह कैसे अद्भुत भावी आशा का परिदृश्य है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 5:6 में हम पढ़ते हैं, अतः हम सदा ढाड़स बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हमें इस देह में शांति मिलती है। मुझे तो अपनी यह देह अच्छी लगती है, और मैं यह समझता हूँ कि प्रत्येक जो अपनी देह में है उसे अपनी देह अच्छी लगती है। मेरे नाक में एक दाग है, लेकिन मैं इससे घृणा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ यह मेरे देह में है। जब मैं छोटा था तब मुझे यह चोट आई, लेकिन आज भी मैं उसे लिए फिरता हूँ, और अब इसका आदि भी हो गया हूँ। परंतु इस देह में रहते हुए मैं प्रभु की उपस्थिति में अनुपस्थित हूँ। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से ही चलते हैं। जी हाँ, पौलुस इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि इस देह से निकलकर हम प्रभु के साथ उपस्थित होंगे। पौलुस कहता है कि हम विश्वास में जीवित रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। मैं मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा। जी हाँ, यह विश्वास है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हम इस देह में रहते हैं और रहते हुए मसीह की उपस्थिति में अनुपस्थित हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए हम ढाड़स बांधे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रभु के साथ रहना अर्थात प्रभु के साथ आराम से रहना, यह विषमता व्यक्त की गई है। यहाँ पर विषमता व्यक्त की गई है, और इस देह में आराम से रहने और प्रभु के साथ आराम से रहने में, जी हाँ, स्मरण रखें, आत्मा नहीं मरती, वह मसीह के पास चली जाती है। देह को मृत्यु आती है, देह में परिवर्तन आता है। आप यह ना भूलें कि एक पीढ़ी ऐसी होगी जो मरेगी नहीं, उसका देह परिवर्तन होगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15:51 और 53 में पौलुस इसी भेद की बात को कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। अतः देह ही है जो मौत की नींद सोती है और देह ही है जो उठ खड़ी होती है। पुनरुत्थान आत्मा का नहीं होता है, परंतु पुनरुत्थान के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है खड़े होना। यह देह ही है जो एक दिन उठ खड़ी होगी। इन बातों को जानते हुए हम विश्वास का जीवन जीते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5:9 में लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। मन की उमंग वही शब्द है जिसे पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों के पत्री 4:11 में प्रयत्न कहता है। चुपचाप रहने और अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, अर्थात अपना काम करने की उमंग में रहो। हमारे मन की उमंग ऐसी हो कि हम उसके समक्ष ग्रहण योग्य ठहरें। इसका अर्थ यह नहीं कि महापुरुष बनने की उमंग रखें, उस प्रिय में हम स्वीकार किए जाते हैं। जी हाँ, पौलुस इसे इफिसियों की पत्री 1:5-6 में स्पष्ट करता है। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया है। मसीह में ग्रहण किया जाना परमेश्वर के समक्ष मेरी दशा है। परमेश्वर मुझे मसीह में देखता है और वह मेरे लिए मेरी हर एक आवश्यकता बन जाता है, बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, मुक्ति। देखिए 1 कुरिन्थियों की पत्री 1:30 में, वह मेरी सिद्धता है। परमेश्वर मुझे मसीह में देखता है और सिद्ध पाता है। आप इस सिद्धता में कुछ नहीं जोड़ सकते। जिसके पास 100% कुछ है तो उसके पास पूर्णता है। हम विश्वासियों के पास मसीह है और हम उस प्रिय में ग्रहण किए जाते हैं। मसीह में ग्रहण योग्य ठहरना प्रत्येक विश्वासी की दशा है। मेरे मित्रों, उसके द्वारा ग्रहण किया जाना एक अलग बात है। यह हमारे जीवन आचरण की अवस्था है। क्या हम मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या हम उसके द्वारा ग्रहण योग्य ठहरने की आश में हैं या उमंग में हैं? ग्रहण योग्य ठहरने का अर्थ यह नहीं कि सबके ऊपर पांव रखकर शिखर तक पहुंचे। मुझे चिंता है कि हमारे मसीही काम में आज अनेक जन ऐसे हैं, वे अपने लिए नाम कमाना चाहते हैं, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। डॉक्टर जी कैंपेल मॉर्गन ने कहा कि वह इस समस्या से संघर्षरत थे। सेवा में बुलाए जाने से पूर्व वे एक शिक्षक थे। यह एक अति पावन पल था। उन्हें परमेश्वर की बुलाहट का बोध हुआ, तू वचन की सेवा के लिए निश्चित रूप से अलग किया गया है। अब यह बता कि तू एक प्रसिद्ध प्रचारक बनना चाहता है या मेरा सेवक बनना चाहता है। डॉक्टर मॉर्गन के मन में पहला विचार उभरा कि वह एक महान प्रचारक बने। यह एक अच्छी उमंग थी। परमेश्वर ने फिर पूछा, तू एक प्रसिद्ध प्रचारक बनना चाहता है या मेरा सेवक बनना चाहता है? अंत में डॉक्टर मॉर्गन ने जान लिया कि उसे चुनाव करना है। अतः उन्होंने कहा, हे धन्य प्रभु, मैं किसी भी बात की अपेक्षा तेरा सेवक बनना चाहता हूँ। वह एक अज्ञात प्रचारक बनना चाहता है। मेरे विचार में परमेश्वर ने उन्हें अपना सेवक तो बनाया, साथ में एक महान प्रचारक भी बनाया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे मन में जो उमंग उठती है उसके द्वारा हमें परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करना है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह हमें अपना सेवक बनाना चाहता है। आपको और मुझे उस स्थान पर आना है जहां हम कहने योग्य हों, हे प्रभु मुझे ले और जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर, मुझे बना, मुझे तोड़ या जो उचित समझे कर। जी हाँ, परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था 45:5 में, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट है, क्या आप अपने लिए बड़ाई खोज रहे हैं? आज बहुत से अयाजकीय और मसीही सेवक हैं जिनके मन में उमंग तो है परंतु स्वार्थ से पूर्ण है। क्या आप सच में परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप अवश्य कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसके लिए वह आपको बड़ा प्रतिफल देगा। मैं सच कहूँ तो मेरी यही चिंता का कारण है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं उसका सेवक बनूँ। मेरे प्रियो, मुझे उसके समक्ष खड़े होकर अपनी सेवा का लेखा देना होगा। आपको भी लेखा देना होगा जो कुछ भी आप करते हैं। इससे हमें उसको ग्रहण योग्य ठहरने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे मित्रों, हम इस देह को त्याग कर प्रभु के साथ होंगे और उसकी धार्मिकता धारण कर लेंगे। वहां हमें अपने अपने कामों का लेखा देना होगा, अतः हम उसे ग्रहण योग्य ठहरे तो हमारे हित में अच्छा है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ध्यान दीजिए, यह न्याय आसन है। कुरिन्थ नगर में आज भी न्याय आसन का खंडहर उपस्थित है। वहां बैठकर नगर के न्यायी नागरिकों का न्याय करते थे। जीवन मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मसीह के न्याय आसन के समक्ष केवल विश्वासी उपस्थित होंगे। यह उनके पापों का न्याय नहीं है, क्योंकि मसीह ने उनका पश्चाताप क्रूस पर कर दिया है। यह न्याय प्रकट करेगा कि आपको प्रतिफल मिलेगा या नहीं। अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। आपको यह नहीं भूलना है कि वह विश्वासियों को लिख रहा है। सब विश्वासियों का न्याय होगा कि देह के कामों का प्रतिफल वे प्राप्त करें। हमारे मसीही आचरण का वहां न्याय होगा। हमारे दैहिक कामों का जो हमने किए हैं उसका न्याय होगा। उसकी उपस्थिति में हम इस पुरानी देह में नहीं होंगे। वह हमसे पूछेगा कि हमने इस देह को यहाँ पृथ्वी पर कैसे रखा। मेरे मित्रों, फिलिपी की कलीसिया को लिखे पत्र में पौलुस इस प्रश्न का उत्तर सुझाता है। 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आगे वह कहता है कि कूच करके मसीह के पास चले जाना बहुत अच्छा है, परंतु उन विश्वासियों के लिए वह इस देह में रहना चाहता था कि उनके मध्य सेवा करे। वह इस संसार में रहकर मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहता था। मेरे मित्रों, मेरी दशा उस बालक के समान थी जिसने प्रचारक के पूछने पर कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है हाथ नहीं उठाया। सबने हाथ उठाया। केवल एक बालक ने हाथ नहीं उठाया तो प्रचारक ने पूछा, तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? उसने कहा, मैं अवश्य जाना चाहता हूँ, परंतु आज के लिए आपके पास स्वर्ग जाने वालों का बहुत बोझ है। उसी बालक समान मैं भी तुरंत स्वर्ग जाना नहीं चाहता। पौलुस भी नहीं जाना चाहता था। वह कहता है कि वह इस देह में थोड़ी देर और रहना चाहता है ताकि सुसमाचार का प्रचार कार्य कर सके। वह अपने देह से मसीह का महिमान्वन करना चाहता है कि वह ग्रहण योग्य ठहरे और प्रतिफल पाए। मेरे प्रियो, मेरी भी यही मनोदशा है। मैं इस देह में रहना चाहता हूँ और जितना अधिक हो सके उतना अधिक परमेश्वर का काम करना चाहता हूँ। यह विश्वासियों की पहली प्रेरणा है। हम सब मसीह के समक्ष उपस्थित होंगे और अपने अपने जीवन का लेखा देंगे। मैं फिर कहता हूँ कि यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:11-15 का श्वेत सिंहासन नहीं है, जहाँ केवल उद्धार से रहित मनुष्य खड़े होंगे। यदि आप विश्वासी हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और अनंत जीवन आपका है, परंतु आपको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा कि प्रतिफल पाने के लिए आपका न्याय हो। आप और मैं उसके समक्ष खड़े होंगे। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि योग्य ठहरने हेतु उसकी सेवा करें। जी हाँ, तब उसकी उपस्थिति में हम उसके मुंह से सुनेंगे, बहुत अच्छा मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू बहुतों में धन्य है। मेरे मित्रों, इस बात को सुनने के लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही सुने? आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, करना चाहते हैं, परंतु उनके जीवन में स्वार्थ है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वार्थहीन सेवा करें ताकि हम उस प्रतिफल को प्राप्त करें जब हम उसके सम्मुख खड़े हों। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप जानते हैं तो उस पर विश्वास करें। यदि आप नहीं जानते हैं, उसे जानें, उसके बारे में सीखें और उससे अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आप भी उसके सम्मुख खड़े हो सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। इस देह से जो हम छूट करके परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारी आत्मा उसके सम्मुख होगी, जहां पर मुझे और आपको हमारे कामों के अनुसार न्याय दिया जाएगा, अर्थात हमें प्रतिफल और इनाम मिलेगा। क्या आज आप उसके लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आज मैं आपकी निकटता में आना चाहता हूं। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आज आपने हमसे स्पष्ट बात किया है और इस बात को आपने हमें बता दिया है कि हमारा न्याय आपके सम्मुख होगा, ताकि हमारे काम आपके सम्मुख प्रकट किए जाएं और इसलिए कि हम प्रतिफल पाएं। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनके जीवन के हर एक बातों को जानते हैं, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। वे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उनके जीवन से बोले और बातचीत करें। तमाम प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरी संगति से उन्हें आप छुटकारा प्रदान करें, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनके लिए मरे हैं। उनके पापों की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन आपने उन पापों को अपने ऊपर में ले लिया, ताकि वे बच जाएं, जीवित रहें। आज आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना प्रत्येक भाई बहनों के लिए है जो आज यह निर्णय ले रहे हैं कि वे आपके समान जिएंगे, आपके भय में जिएंगे, आपके वचन में जिएंगे और एक अच्छा इंसान बनकर उस प्रतिफल को प्राप्त करेंगे जब आप इस जगत में हमारे लिए आएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा तेरे सिवा। जग में